ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। कोरोना वायरस संक्रमितों को इलाज से वंचित नहीं किया जाएगा, सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुंग का कथन। प्रधानमंत्री और मंत्रियों का दशहरे की बोनस रकम कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण कोष में जमा करने का मंत्रिपरिषद ने किया निर्णय। आज देशभर में 3,790 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। 2,335 हुए संक्रमण मुक्त, 18 संक्रमितों की हुई मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। इस साल प्रधानमंत्री और मंत्रियों की दशहरे की बोनस रकम कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण कोष में जमा की जा रही है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को साझा करने के लिए आज संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुंग ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों को दी जाने वाली दशहरे की बोनस रकम कोरोना नियंत्रण कोष में जमा करने का निर्णय हुआ है। इस बात का जिक्र करते हुए सरकार किसी भी नागरिक को इलाज से वंचित नहीं होने देगी। उन्होंने बताया कि गरीब, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक और एकल महिला लगायत कोरोना संक्रमितों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। 15 दिनों के अंदर काठमांडू में 2,000 और हर प्रदेश में 200 एचडीयू बनाने का निर्णय करने के साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक ने हवाई उड़ान समेत अन्य यातायात साधनों के किराए में पुरानी दर कायम करने का निर्णय किया है। इसके अलावा भी अन्य कई निर्णय सरकार ने किए हैं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने होम आइसोलेशन में मरने वालों के शवों का सावधानी के साथ व्यवस्थापन करने का आग्रह किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने बताया कि ग्लोब्स, मास्क, लगायत सुरक्षा के उपाय अपनाते हुए संक्रमित परिजन के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। सरकार द्वारा संक्रमितों को स्वयं टेस्ट और इलाज कराने के लिए आग्रह के संबंध में उन्होंने साफ किया कि इलाज का खर्च उठा सकने वालों के लिए ही ऐसा आग्रह किया गया है। आज देशभर में कोरोना के 3,790 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें काठमांडू घाटी के ही 2,388 संक्रमित शामिल हैं। इसे मिलाकर देशभर में अब तक संक्रमित होने वालों की संख्या 1,36,036 हो गई है। इनमें से 94,501 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। आज ही 2,335 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। आज 18 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है, जिसे मिलाकर कोरोना संक्रमण के बाद मरने वालों की संख्या 757 हो गई है। बहरहाल देश के 76 जिलों में 40,778 सक्रिय संक्रमित हैं। यातायात व्यवस्था विभाग ने सार्वजनिक यातायात साधनों में चालक, सहचालक और यात्रियों के लिए मास्क के साथ ही वाइजर यानी फेस सील भी अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने आज एक सूचना जारी कर कोविड-19 के संक्रमण पर रोकथाम के उद्देश्य से छोटी से लेकर लंबी दूरी तक यानी सभी सार्वजनिक यातायात साधनों में ये नियम लागू कर दिया है। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार नेम्बांग में कोरोना की पुष्टि हुई है। आज हुए पीसीआर टेस्ट में मंत्री नेम्बांग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने फेसबुक के जरिए साझा की है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
ल्यान्डलाइन फोनमा समस्या छ।
1498 फोन गर्नुस्।
समस्या पोस्टपेडमा नि आयो।
1498 फोन गर्नुस्।
ओहो सम्झे, प्रिपेडको पुक नम्बर पनि चाहिएको थियो।
त्यसको लागि पनि 1498 फोन गर्नुस्।
नेपाल टेलिकमको जीएसएम सीडीएमए मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा कुनै पनि समस्या आएमा जे सोध्न मन छ 1498 फोन गरेर सोध्नुहोस्। यो नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा ने अपनी पार्टी के संघीय सांसदों को दशहरे का भत्ता वापस करने का निर्देश किया है। ये बताते हुए कि सरकार इस रकम का प्रयोग कोरोना संक्रमितों के इलाज और व्यवस्थापन के लिए करेगी। सभापति देउवा ने सांसदों को दशहरे का भत्ता वापस करने का निर्देश किया। इसी बीच कांग्रेस के सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण का परीक्षण एवं उपचार के विषय में किए गए निर्णयों को गैर जिम्मेदाराना बताया है। कांग्रेस ने आज एक बयान जारी करते हुए कहा कि संक्रामक रोग के इलाज को लेकर सरकार कानूनी व्यवस्था के तहत भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। बयान में आगे कहा गया है कि कोरोना के कारण जनता के आर्थिक जीवन पर पड़े नकारात्मक असर के मद्देनजर ऐसी विषम परिस्थिति में जनता का साथ देना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी पालिकाओं में आगामी मार्च शीर्ष 15 गते को एक साथ अस्पताल भवनों का शिलान्यास किया जाएगा। सरकार ने चालू आर्थिक वर्ष के बजट में सभी पालिकाओं में 5 से 15 सैया वाली अस्पताल भवनों का निर्माण करने की योजना बनाई है, जिसके तहत मार्च शीर्ष 15 गते को एक ही समय में शिलान्यास करने की तैयारी की जा रही है। ये जानकारी अर्थ मंत्रालय के प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल ने दी। इसी तरह कोरोना की वैक्सीन और अन्य आपातकालीन दवाओं के प्रयोग को व्यवस्थित करने संबंधी मौजूदा औषधि आईन में सामयिक संशोधन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। बता दें कि अर्थ मंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल और स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त ठकाल की उपस्थिति में दोनों मंत्रालयों के पदाधिकारियों के बीच कोविड 19 पर रोकथाम, नियंत्रण और इलाज के लिए किए जाने वाले समन्वय के मद्देनजर बुलाई गई बैठक ने यह निर्णय किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोविड 19 की महामारी से जेल में रह रहे कैदियों को सुरक्षित रखने के लिए कारागार सुधार संबंधी 13 सूत्रीय सुझाव के क्रियान्वयन के लिए सरकार से सिफारिश की है। आयोग के सचिव वेद प्रसाद भट्ट ने एक बयान जारी करते हुए ये जानकारी दी। कोविड 19 के कारण कारागार में रह रहे कैदियों, सुरक्षा कर्मियों तथा कर्मचारियों को हो सकने वाले संक्रमण के मद्देनजर मास्क, सैनिटाइजर, पंजा, फेस शील्ड, साबुन, बुखार नापने वाली मशीन, पीपीई सेट आदि सामग्रियों को खरीदने के लिए जल्द से जल्द बजट व्यवस्थापन करने का जिक्र बयान में किया गया है। देश में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के जोखिम के मद्देनजर जिला प्रशासन कार्यालय रुकुमपूर्व ने भीड़भाड़, मेला संचालन और मंदिर दर्शन आदि में निषेधाज्ञा जारी की है। मंदिर में नित्य पूजा के अलावा सभी तरह की पूजा पर रोक लगाई गई है। ये जानकारी प्रमुख जिलाधिकारी राजकुमार राय ने दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,04,35,800 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 3,19,08,900 से अधिक लोग ठीक हुए हैं, वहीं 11,20,200 की जान भी गई है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है, जहां संक्रमित होने वालों की संख्या 83,93,000 से अधिक है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,24,800 से अधिक हो चुकी है। वहीं भारत में 75,74,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,14,900 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में 52,35,300 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,53,900 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ईरान ने कहा है कि अगर काराबाख की तरफ से ईरान की धरती पर मिसाइल या तोप के गोले आए तो वो इसका जवाब देगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद खतीबजादे ने कहा कि ईरान की धरती पर किसी भी तरह का हमला हुआ, चाहे वह अनजाने में ही किया गया हो, क्यों तो फिर ईरान उसका उपयुक्त जवाब देगा। समाचार एजेंसी तास ने ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रेस सर्विस के हवाले से ये खबर दी है। पिछले हफ्ते ऐसी खबरें आई थी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से कम 8 मिसाइलें दागी गई थी, जो कि अराकेज नदी के ईरानी किनारे की तरफ खोड़ा अफरीन इलाके में गिरी थी। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। शनिवार को अजेरी सेना ने इसी नदी के दूसरे किनारे पर अपना झंडा गाड़ दिया था। काराबाख में सिर्फ 3 हफ्तों की लड़ाई में कई दर्जन मिसाइल और गोले ईरान की सीमा में उड़कर चले गए हैं। बता दें कि अर्मानिया और अजरबैजान की सेनाओं के बीच कल रविवार को नागारगो काराबाख में लड़ाई बढ़ गई है और दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होने की खबरें मिल रही हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर लड़ाई में आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगा रहे हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.6 और न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। कोरोना वायरस संक्रमितों को इलाज से वंचित नहीं किया जाएगा, सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना पर विधि मंत्री पार्वत गुरुंग का कथन। प्रधानमंत्री और मंत्रियों का दशहरे की बोनस रकम कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण कोष में जमा करने का मंदिर परिषद ने किया निर्णय। आज देशभर में 3,790 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने, 2,335 हुए संक्रमण मुक्त, 18 संक्रमितों की हुई मृत्यु और दुनिया भर में कोरोना से 4,04,35,000 से ज्यादा हुए संक्रमित। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से मुझे आगे दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।